بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم ترشدون صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے جہاں کہیں مومنین و اونات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے جس کسی نے بھی دعا کی التماس کیا حاجات کی قبولیت کے لیے جو علیل ہیں ان کی شفا یابی کے لیے اور دنیا میں جہاں کہیں پر بھی انسان بستے ہیں ان کو جلد از جلد اس موذی مرض اور وبا سے نجات دلانے کے لیے ایک باواز بلند صلوات عنایت فرمائیں اذان محترم سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ارشاد ہو رہا ہے اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں یقیناً قرآن کا خطاب رسول اللہ سے ہے کیونکہ قرآن بنا رسول کے ہم تک نہیں پہنچ سکتا لہذا جب خطاب ہو رہا ہوا اذا سألک عبادی عنی اے رسول یہ اے رسول کو قوموں میں رکھ لیجئے اے رسول جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں یعنی یہ آیت عجیب ہے کہ بندے خدا کے ہیں لیکن پوچھ رسول سے رہے ہیں اے رسول جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو اب میں ترجمہ الگ سے کرنا نہیں چاہتا اجازت دیں کہ گفتگو کے ساتھ ساتھ ہی ترجمہ بھی آگے بڑھے عام طور پہ آپ اگر کسی سے خطاب کریں کسی سے بات کریں اور ان سے کہیں اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہنا یہی ہوتا ہے نا اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہنا یہ تو کہنا جو ہے یہ بیچ میں حائل ہو جاتا ہے لیکن آیت میں خدا نے اس پردے کو نہیں رکھا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آیت میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جملہ آئے قُل فَقُل تو تم کہنا کہ نہیں فَقُل نہیں کہنا بلکہ بنا قُل کہے گا فَإِنِّي قَرِيبٌ تو انہیں بتانا میں ان کے نزدیک ہوں اگر بیچ میں کل اب کوئی سوال کرے کیوں نہیں آیا کل بیچ میں اگر بیچ میں کل آتا تو یہ جو اگلا جملہ ہے اس کی شدت کم ہو جاتی جب خدا کہہ رہا ہے انی قریبن قریب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بیچ میں کل جیسے لفظ کا بھی فاصلہ نہ آئے تو کیا کہا فَإِنِّي قَرِيبٌ उनको बताओ मैं करीब हूं। और कैसे करीब हूं? जब कोई पुकारने वाला पुकारता है तो मैं उसकी आवाज पे लब्बैक कहता हूं। अब इस आयत के अंदर बहुत से मबाहिस हैं। एक तो खुद आगाज ही जहां से हो रहा है इबादी, कि ये अब्द कौन है और ये उबूदियत क्या है। इससे आगे बढ़े तो एक बहुत ही अहम बात है और वो है खुदा कह रहा है फइन्नी करीबुन, मैं करीब हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं हजरात, इंशाअल्लाह मैं करीब हूं। अच्छा, अब आपसे मैं एक सवाल करूंगा, इंशाअल्लाह शायद तकरीबन सारे चेहरे वो हैं जिनको मैं बचपन से जानता हूं, कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं नहीं जानता हूं। जब आप ये कहते हैं जनाब कोई शय करीब है, तो बीच में फौरन पता चल जाता है कि कोई फासला है जिसकी बात हो रही है, यानी कोई मुसाफत है बीच की, जिसके बारे में आप लफ्ज करीब कह के जाहिर कर रहे हैं। मसलन मैं यहां मेंबर पे हूं और मेरे से सबसे नजदीक मसलन सिकंदर भाई बैठे हुए हैं, मैं कहूं सिकंदर भाई मुझसे 5 फुट के फासले पे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये मुझसे 5 फुट के फासले पे हैं तो मैं भी इनसे 5 फुट के फासले पे हूं। ऐसा ही है, ये कतई नहीं हो सकता मैं कहूं ये मुझसे 5 फुट के फासले पे हैं लेकिन मैं इनसे 4 या 3 या 6 फुट के फासले पे हूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन ये कहां होगा? जहां फासला मादे से मादे के दरमियान हो, जहां दोनों तरफ मैटर होगा, वहां ये बात आएगी कि दोनों तरफ का फासला एक होना चाहिए। लेकिन अगर कोई मावराए मादा हो, अगर मेटाफिजिक्स की बात हो, तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते फासला इंचों में, फुटों में, किलोमीटर्स में, नहीं। जब चीज ही रैशनल हो जाए, जब चीज ही मेटाफिजिक्स की हो जाए, अब आप यहां पर फासला अपने उन पैरामीटर्स में नहीं नाप सकते जो आपने मुआयन किए हुए हैं। भाई मसलन आप कहते हैं कि मैं फलां से बड़ी मोहब्बत करता हूं, हम सब कहते हैं हम अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते हैं। अब आपसे कोई पूछे कितनी, बहुत, ये बहुत कितने किलो है, ये कितने मन है, कोई बता सकता है? नहीं, ये हमारे इन जाहिरी नापने तोलने के जो आदाद हैं, जो इसके शुमारे हैं, उनमें ये शुमार नहीं हो सकती। ये एक गैर मादी चीज है, ये एक माकूल चीज है, लिहाजा हम इसको इन पैराओं में नहीं नाप सकते। तवज्जो चाहता हूं। अब अगर अल्लाह ये कहे फइन्नी करीबुन, मैं करीब हूं, ये कौन सा करीब है? अगर किसी का खुदा कुर्सी पर बैठा हो, तो वो तो ये कह सकता है कि मेरे और उसके दरमियान में मसलन इतने मीलों का फासला है। लेकिन जिन्होंने तौहीद या अली से सीखी हो या सैयद सज्जाद हो, एक और सलावात सुनाए फरमा दो, वो क्या ये बात कर सकते हैं? उनको तो उनके आइम्मा ने तौहीद ऐसी दी है। ये जो आज खुद को मुवहिद समझ के सारी दुनिया को मुशरिक समझते हैं, अगर आप जाके उनकी तौहीद को टटोलें और उस तौहीद को एक छन्ने से, जिसको माकूलात का छन्ना कहते हैं, गुजारें, तो मालूम होगा कि जो ये तौहीद घर रहा था, जब अक्ल बट रही थी तो वो खुद छन्ना लेके खड़ा हुआ था। हमें तो अहल बैत से ये तौहीद मिली है, खुदा जिस्म और जिस्मानियात से पाक मुबर्रा मुनज्जा है। तो अब ये कैसे हल हो, फइन्नी करीबुन। चलिए और आयत पढ़ता हूं, इन्नी अक्रबु इलैहिम मिन हब्लिल वरीद, बेशक मैं इनकी शैरख से ज्यादा इनके नजदीक हूं। परवरदिगार, अब तो शैरख कह दिया, शैरख तो एक मादी चीज है, तवज्जो है कि नहीं है, शैरख एक मादी चीज है, मैं इनकी शैरख से भी ज्यादा नजदीक हूं, तू मादी नहीं है। और अब करीब के माना हम कैसे ये तय करें। अच्छा, यहां एक और सवाल उठा दूं ताकि और मामला जो है वो थोड़ा संगीन हो जाए। जब आयत कह रही है इन्नी करीब हूं, मैं तुम्हारी शैरख से ज्यादा करीब हूं, मैं तुमसे नजदीक हूं, खुद आयत, ये तो कोई हदीस तो नहीं है कि आप में से कोई उठ के कह दो मतलब मैं नहीं मानता, ये आपकी तरफ की है मेरी तरफ की नहीं है, ये सही है ये हसन है ये ज़ईफ है ये मुरसल है ये खबरें वाहिद है, हजार बहाने हदीस में किए जा सकते हैं, लेकिन ये तो आयत है। अब जब आयत है, तवज्जो, जब आयत कह रही है खुदा नजदीक है, जब आयत कह रही है कि हम तुम्हारी शैरख से ज्यादा करीब हैं, तो ऐसे में हमें वसीले का क्या करना है। तवज्जो फरमाएं, आज पहले बहस फंसेगी फिर सुलझेगी। भाई जब खुदा कह रहा मैं नजदीक हूं, तो जो नजदीक हो, भाई साथ में कोई बैठा हुआ है, मुझे उस तक कोई बात पहुंचानी है, तो जो है ही करीब, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं किसी को उसके और अपने बीच में वास्ता वसीला बनाऊं और उसको कहूं ये मेरा खुदा तक पहुंचने का वसीला है। वो कह रहा मैं तो अपने बंदों के नजदीक हूं, मैं कह रहा हूं नहीं, मैं किसी को वसीला बनाऊंगा। ये क्या हो गया, आयत है। अच्छा, अब जरा तवज्जो चाहता हूं, जहां पर ये बात हो कि फासला कुर्ब व बुद, दूरी और नजदीकी मादे में तकसीम हो और मादे से मादे के दरमियान की मुसाफत के बारे में बात की जा रही हो, वहां बिल्कुल ऐसे ही है कि दो तरफा मुसाफत एक होगी। अगर लाहौर मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद से 600 किलोमीटर पे है, तो इस्लामाबाद भी लाहौर से 600 किलोमीटर पे होगा। लेकिन अगर बात मावराए मादा की हो, तो वहां पर बेअैन ही ये बात सादिक आएगी कि हो सकता है खुदा तो मेरी शहरत से ज्यादा नजदीक हो, लेकिन मैं उससे बहुत दूर हूं, क्योंकि यहां मादी बात नहीं हो रही, खुदा करीब है। यानी क्या, किसने महसूस किया अपने साथ खुदा को, आवाज इसको सही कीजिएगा, सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर बात ये होती कि खुदा मादों में नापा जा रहा होता, तो हम ये कह सकते थे अब सही हो गई, सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, ऑटोमेटिक सिस्टम है शायद। एक और सलावात इनायत फरमाए, तो तवज्जो फरमाइए हजरात ने, जहां मादा होगा वहां यह मुश्किल आ सकती है, लेकिन जहां मादे से परे वो बात, वहां हो सकता है एक फरीक एक तरफ बहुत नजदीक हो लेकिन दूसरा बहुत दूर। मैं खुदा से बहुत दूर हूं, क्यों? अच्छा ये भी अब तय पा जाए कि खुदा से कुर्ब बहुत के माना क्या है, मैं खुदा से नजदीक हूं या खुदा से दूर, उसके क्या माना है। तवज्जो, खुदा कमाल ही कमाल है, कमाल मुतलक है, उसकी जात में कोई नक्स नहीं है। जहां भी किसी नक्स का कोई काम हो या जहां कोई नक्स पाया जाता हो वो सब कुछ हो सकता है, खुदा नहीं हो सकता। कोई नक्स जाते इलाही में नहीं हो सकता, इसका मतलब वो कमाल ही कमाल है। जब वो कमाल ही कमाल है और मैं नक्स ही नक्स, तो कमाल से नाकिस कैसे नजदीक हो? मैं नाकिस, वो कमाल ही कमाल, मैं कैसे उसके नजदीक हूं? कहा यही तो बताना चाहते हैं, एक नाकिस कामिल से उसी वक्त नजदीक हो सकता है जब उसका नक्स कम होता चला जाए। जितना नक्स कम होता चला जाएगा वो कमाल मुतलक से नजदीक तर होता चला जाएगा। एक मकाम ऐसा आएगा वो इंसान कामिल की मंजिल पे कदम रखेगा, और इससे आगे एक मर्तबा आएगा वो इंसान अकमल की सूरत में 14 की सूरत में चल रहा होगा। यकीनन हर कोई एक दर्जे का नहीं है, कोई किसी दर्जे का है, कुछ उससे थोड़ा ऊपर, कोई उससे थोड़ा ऊपर, कोई उससे थोड़ा ऊपर। तो जो ये निचले दर्जे पे खड़ा है सबसे, इससे जो ऊपर है, तो मैं तो चाहता हूं इससे जो ऊपर है, वो जो इससे ऊपर खड़ा है वो इससे ज्यादा कामिल है, इसलिए खुदा के ज्यादा नजदीक है, और जो उससे ऊपर है वो उससे ज्यादा कामिल है, और ये सिलसिला मरातब के साथ चलता हुआ एक आखिरी नुक्ते तक पहुंचेगा। अब बहुत से ऐसे कामिल होंगे जो मुझ जैसे नाकिस की निगाह में कामिल होंगे, लेकिन जो उनसे ऊपर का कामिल होगा उनकी निगाह में वो भी नाकिस होंगे। एक तरीका कमाल मुतलक तक पहुंचने का यह है कि जो अपने नक्स को हटाकर कमाल की मंजिल पे पहुंचे हैं और जो कुर्बे इलाही की मंजिल में अपना घर बना चुके हैं, उनसे नजदीक हो जाओ तो खुदा से नजदीक हो जाओगे। एक तरीका यह है कि जो करीब हैं उनका कुर्ब तलाश कीजिए। अब हमें एक लम्हा दिखाई देगा कि जनाब अली हम हजरत अब्बास का कुर्ब हासिल करना चाहेंगे क्योंकि वो खुदा से नजदीक हैं। तवज्जो है कि नहीं है? सिलसिला मराते बढ़ता चला जाएगा, हम अंबिया को देखेंगे, हम अगर हजरत नूह की कब्र मुबारक पे पहुंचेंगे, नजफ अशरफ में जो लोग ज़ियारत कर चुके हैं, जनाबे आदम और जनाबे नूह अलैहिस्सलाम दोनों की कब्र कहाँ है? जनाबे अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जवार में। हम उनके बारगाह में पहुंचेंगे, हमें पता है कि कामिल हैं, हम उनसे कहेंगे सिफारिश कीजिए बारगाह खुदा तक पहुंचाइए। हम हजरत इब्राहिम की कब्र पर पहुंचे अगर मिल जाए, हम कहेंगे हमारी सिफारिश। और अगर कब्र तक ना भी पहुंचे, ये तो मैंने मिसाल के तौर पे कह दिया, ये जो बातनी कुर्ब के मरातब हैं इनके लिए हुसैन के हरम में पहुंचना जरूरी नहीं है। कोई पहुंच जाए ठीक है, आपको खुदा ने ये सआदत बख्शी, लेकिन ये मकतब अहले बैत का एजाज है कि वो जाहिरी फासलों की वजह से फजीलतों से महरूम नहीं करता। परवरदिगार मेरा इसमें क्या कसूर है कि तूने मुझे पाकिस्तान में पैदा कर दिया, सारी जिंदगी मुझे वसाइल मुहैया ना हो सके तेरे उस वली की बारगाह में पहुंचने के लिए जिसे तूने अपनी बारगाह में कुर्ब से नवाजा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? कहा तो तुम क्या समझते हो कि हम आदिल नहीं हैं? हम आदिल हैं। हम जिस्मानी कुर्ब से ज्यादा कल्बी कुर्ब पे एतमाद रखते पहुंच जाए। अब एक जुमला सख्त है, कोई इसको जैसे चाहे ले ले, मैं तो कह जाऊंगा, जिस्म बेशक जरी से जाके मस हो जाए और दिलो दिमाग बाहर बाजार में घूम रहे हूं, तो क्या किया? और दिल करबला में मौजूद हो और इंसान सड़क पे चल रहा हो तो क्या खोया? नहीं, मैं वहां हुसैन का जुमला यहां इस तरह से कहता हूं, जो शख्स हुसैन की जरी से जाके मस हुआ जिस्म के तौर पर, लेकिन उसने दिलो दिमाग किसी बाजार में छोड़ दिया, उसने क्या पाया? और जिसने दिल हुसैन के हाथ में दे दिया फिर वो दुनिया में कहीं भी रहा, उसने क्या खोया? जो फरमा रहे हैं ये कुर्ब वो कुर्ब नहीं है। अब मैं जुमला, मुझे पता मैं कहां बैठा हूं, मुझे मालूम है मैं कहां बैठा हूं, और मैं जुमला भी ऐसे कहूंगा कि मुझे पता मैं कहां बैठा हूं। हमारा पिछले 1400 साल से झगड़ा ही है, हमने तो हमेशा फकत जिस्मानी कुर्ब को डिनाई किया है। जिस्म साथ जुड़ा हुआ वो फायदा नहीं है उस वक्त तक जब तक कल्ब साथ में हो। साथ रहते हुए कई मुनाफिकीन ऐसे थे रोज रसूल को देखते थे, लेकिन मजाल है कि साथ रसूल के रहने से जो जिस्मानी कुर्ब हासिल हो रहा था उसने कोई मर्तबा दिया हो, लेकिन वो एक जो यमन में रहता था जिंदगी भर रसूल को नहीं देखा, रसूल ने कहा अगर चाहो बारगाह खुदा में शफाअत हासिल करो तो वो ऐसे कल्बी से जाके करा लेना। तो फरमाई अल्लाह ने, तो ये जो जाहिरी कुर्ब बोध है इसका तो कोई माना नहीं, असल चीज क्या है? बातिन जुड़ा हुआ कल्ब का कुर्ब चाहिए। अगर कल्ब जुड़े हुए हैं तो कहीं भी दफन हो जाए उठेगा वादियो सलाम सो, और अगर दिल टेढ़े हैं तो कहीं भी दफन हो जाए उठेगा वादियो बरूद से सलावत पढ़े मोहम्मद वालों। तो आप सवाल फिर अपनी जगह पर है, मरातिब है, गुफ्तगू हो रही थी मरातिब की, मैं पहुंचा बार को मिसाल पे आई थी वहां से कहां तक खिंचती चली चल गई, मैं पहुंचा बारगाहे रिसालत में, मैं पहुंचा मूसा की बारगाह में, मैं पहुंचा ईसा की बारगाह में, मैं पहुंचा नूह की बारगाह में, मैं पहुंचा आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। मैंने कहा आपको खुदा ने यह मर्तबा दिया है, आप उसके करीब हैं, आपको कुर्ब इलाही का दर्जा हासिल है, बारगाह खुदा में मेरी सिफारिश कीजिए, वो सिफारिश करेंगे। लेकिन ये है इंसान कामिल, ये कौन है? इंसान कामिल। अब ये जो इंसान कामिल है, अगर ये कहीं फंस जाए तो इन इंसान कामिल, इंसान है कामिल के लिए क्या रास्ता है? ये रुजू करेंगे इंसान अकमल की तरफ, कामिल अकमल की तरह रुजू करेगा, ना किस कामिल की तरह रुजू करेगा। तवज्जो फरमा रहे हैं। अब अगर आप समझना चाहें तो फलसफा ये है कि जनाब आदम खुदा से नजदीक थे, लेकिन उन्हें पता था कि मेरे और खुदा के दरमियान एक अकमल मखलूक है जो मुझसे भी ज्यादा का, क्योंकि तू महमूद है। परवरदिगार तुझे वास्ता है अली का, क्योंकि तू आला है। परवरदिगार तुझे वास्ता है फातिमा का, क्योंकि तू फातिर समावात वल अर्ज है। परवरदिगार तुझे वास्ता है हसन का, क्योंकि तू मुहसिन है। परवरदिगार तुझे वास्ता है हुसैन का, क्योंकि तू कदीम और एहसान है। इस इंसान कामिल को इन इंसान करीबन, मैं करीब हूं, लेकिन इसका ये कहा मतलब है कि तुम भी मेरे करीब हो। मैं करीब हूं, इसका ये कहा मतलब है कि तुम, ये एक मुवालता है जो मुसलमानों को वहां भी हुआ। जब आयत उतरी कि रसूल आप कहिए अना बशरुम मिसलुकु, मैं बशर हूं तुम जैसा। हम रसूल की बशरियत का इनकार नहीं करते, कुरान की आयत है, कौन इनकार कर सकता है, साफ आयत है। लेकिन हम इसका इनकार करते हैं कि कोई कहे कि मेरे जैसे बशर है। आयत ने कहा रसूल तुम कहो मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, ये नहीं कहा, ये भी कहो तुम भी मेरे जैसे बशर हो। इन दो चीजों में फर्क है। और क्या फर्क है? यूहा इलैया, मुझ पे वही उतरती है। अगर आप ये कहते हैं कि रसूल मुझ जैसे और मैं रसूल जैसा, तो फिर बताइए कितनी वहियां उतरती हैं आप पर। यहां भी ऐसे ही है, इन्नी करीबुन, मैं करीब हूं, लेकिन क्या तुम भी करीब हो? जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसकी आवाज पे लब्बैक कहता हूं। तवज्जो, ये आयत क्या कह रही है जरा तवज्जो चाहता हूं। आज क्योंकि सैयद सज्जाद से मुतालिक बात है, ये आयत क्या कह रही है? ये आयत बता रही है कि ऐ मेरे बंदो, तुम सरापा न्याज हो और मैं बेन्याज हूं। अगर अपनी जरूरत को दूर करना चाहते हो, अपनी न्याजमंदी को दूर करना चाहते हो, तो लाजिम है कि सारी दुनिया को छोड़ के मेरे न्याजमंद बन जाओ, छोड़ के मेरे न्याजमंद बन जाओ। फिर होगा क्या? फिर ये होगा कि तू मेरी मानता रहेगा, और एक ऐसा मकाम आएगा कि अब तू जो कहेगा वो मैं करूंगा। इजाजत है? वैसे मैं वाकयात नकल करने का आपको पता आती नहीं हूं, लेकिन अब क्योंकि एक मौजू से मुतल्लिक चीज आ रही है, इजाजत दें अगर एक सलावात इनायत फरमाए। आयतुल्ला हुसैन गंजी ने यह वाकया अपनी किताब इमाम शनासी में लिखा है। कहते हैं कि शिराज या इस्फहान किसी शहर में एक बेचारा मजदूर था, वजन ढोने वाला, इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के इधर। आपके भी बाजारों में आपने हजार ऐसे देखे होंगे मजदूर होते हैं जिनका काम क्या होता है, रॉ मटेरियल उठा के यहाँ से वहां पहुंचा दिया, वहां से यहाँ पहुंचा दिया। मजदूर जिस बाजार में काम करता था वहां नीचे दुकानें थी और ऊपर रिहायशी मकान बने हुए थे। एक माँ अपने बेटे के साथ छत पे खड़ी थी और जो जंगला लगा हुआ था वो लकड़ी का बहुत खस्ता हाल था, बच्चा उसमें झूलने लगा। कुछ देर के बाद वो जंगला टूटा और बच्चा गिरने लगा। जब वो लुढ़कता हुआ छत पे से गिर रहा था तो माँ ने चीख के पुकार के कहा, है कोई मेरे बच्चे को बचा ले। तो यही मजदूर जो वहां पर वजन उठाने में मशगूल था, इसने उसे देख के इशारा किया और बच्चा वहीं हवा में मुअल्लक हो गया। हम लोग तो लोगों के पेशों को मद्देनजर रख के उनकी मंजिलत और मकाम को देखते हैं ना। अगर पेशे से किसी को खुदा की बारगाह में मंजिलत मिलती तो मैसम तमार मैसम ना होते। हदीस कुदसी, अजीब हदीस है, तो कभी हदीस में एक जुमला नकल कर दूं। यहीं पर फरमाते हैं, अल्लाह ने कुछ चीजों को कुछ चीजों में छुपा के रखा है, उनमें से एक खुदा के औलिया हैं। अल्लाह ने अपने औलिया को अपने बंदों में छुपा के रखा है। वो ऐसे जाहिर नहीं होते। अब जब आपके सामने की बात है, अगर यहाँ पे कोई ऐसा कुछ कर दे, कोई चीज गिरने लगे और वो उसे हवा में मुअल्लक कर दे तो दुनिया भागी पहुंच जाएगी, भाई तावीज लिख दे कोई, सारे बॉय कैसे किया ये तुमने, ये किया कैसे तुमने, तुमने कैसे कर लेते हो। उसने कहा, इसमें कौन सा मसला भाई, अब्दुल्ला सुनिएगा, इसमें कौन सा मसला, सारी जिंदगी मैंने उसकी मानी है, आज मैंने कहा तो उसने मेरी मानी। सारी जिंदगी मैंने उसकी मानी है, आज उसने मेरी मान ली। तो जो जिस कदर उसकी बारगाह में झुकता चला जाए, वहां से आता होती चली जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि तरीका क्या हो उसकी बारगाह तक पहुंचने का। सवाल तो यहां है, सब चाहते पहुंचे उसकी बारगाह में। और ये जो आयत बतौर खास आज आपके सामने 186 नंबर सूरह बकरा की तिलावत की, तर्जुमा किया कि जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें, बस मैं उनसे नजदीक हूं, सुनने वाले की आवाज सुनता हूं और उस पर लबैक देता हूं, उसको जवाब देता हूं। क्या माना उलमा बयान करते हैं, दूसरे लफ्जों में ये आयत दुआ की बात कर रही है कि तुमने कैसे बारगाह खुदा में दुआ करनी है। आपको अब वक्त नहीं है इस वक्त, इस घड़ी ने तो साथ छोड़ दिया, सलावात पढ़े मां। बेटा ये बच्चों को जरा एक तरफ कर लीजिए, सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलावात सुनाए सर, बस वहां जहां बैठे हो बैठे रहना, शोर शराबा नहीं करना। एक और सलावात सुनाए सर, ये दुआ क्या है। रसूल कहते हैं तुम्हारे लिए जरूरी है कि अंबिया के असलहे से लैस हो जाओ। या रसूल, अंबिया का असलहा क्या है। कहा दुआ, कहा ये एक ऐसी चीज है कि जो पत्थर में सुराख कर सकती है, पहाड़ों को अपनी जगह से हिला सकती है, जो नहीं लिखा गया उसको भी तुम्हारी किस्मत में लिख सकती है। ये तो एक अलग बहस है, तकदीर कज़ा व क़द्र मौजू नहीं है और ना इतना वक्त है। वो अपराध एक आलिम नक़्ल कर रहे थे, किसी का वाक़या बड़ा अच्छा वाक़या था। एक शख्स आया, बैठा, नमाज हुई, नमाज पढ़ के फौरन जाने लगा। तो उन्होंने उसे बुलाया, रोका, कहा दुआ नहीं की, दुआ करने क्या फायदा है, जो उसने लिख दिया वो मिलेगा, जो नहीं लिखा वो नहीं मिलेगा। तो जो उसने लिख दिया वो मिल जाएगा, जो नहीं लिखा नहीं, वो नहीं मिलेगा। उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, कहा हो सकता है खुदा ने ये लिख दिया हो, जो तू मांगेगा वो तुझे दूंगा। जो तू मांगेगा वही दे दे, ये भी तो लिख सकता है खुदा, तो मांग। हमारा मसला क्या है, हम अपना काम अल्लाह के जिम्मे लगाते हैं और अल्लाह का काम अपने जिम्मे ले लेते हैं। हमारा काम है मांगना, उसका काम है देना। अगर बफर जाहिरी तौर पे वो नहीं दे रहा तो वो उसका काम है, मैं अपना काम तो कर लूं। मेरा काम क्या है, मैं मांगे जाऊं, जब वो मसलहत देखेगा दे देगा, अगर नहीं देखेगा तब भी जाया नहीं होने देगा। वो जो लोग फकत इस दुनिया को नकद समझते हो, अभी तो हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं, कल परसों को उमर इब्न साद को भी शामिल कर लिया जाएगा। हाँ होने वाला है ये, बल्कि कट गई एफ आई आर तो कटी है, लेकिन चले वो एक फर्द का हम अमल कह सकते हैं। हम कहते हैं ये फर्दी अमल, हम सब पे चुस्पा नहीं करते, लेकिन कल कलां को कोई वईद नहीं है कि वो भी शामिल हो जाए उस दायरे में। तो उसने क्या कहा था, कहा वो जो जन्नत का मामला है वो तो कर्ज है, और ये जो रह की हुकूमत है ये नकद है, और कोई भी आकिल इस नकद के बदले में इसको छोड़कर उस कर्ज के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। ये कौन कह रहा है, ये वही कह सकता है जिसको अभी तक माद हजम ही नहीं हुई हो, ये वो कह सकता है जिसका कयामत पर खुदा पर रसूल पर आयात पर हदीस पे कोई ईमान ना हो। कुरान ने आगाज में कहा मोमिन कौन है, जो गैब पर ईमान लाता है। तुम्हें लग रहा होगा ये कर्ज, लेकिन हुसैन के साथ जो खड़े थे उन्होंने बताया कि हमारे लिए यहाँ सब कुछ सामने नकद है, कर्ज कुछ नहीं है, ये सब कुछ नकद है, कर्ज नहीं है। दलील दूं आपको, उनका यकीन किस मंजिल पे था, अगर हुसैन उनसे वादा लेने से पहले जन्नत में मनाजिर दिखाते तो दुनिया कह सकती थी कि चूंकि देख लिया इसलिए लालच में जा रहे हैं। हुसैन ने तमाम तर चीजें उठा दी, का जन्नत भी दूंगा बैग भी उठाता हूं। लेकिन क्या हुआ, अभी जन्नत में मकाम नहीं दिखाया, का जाओ चले जाओ, कोई गया, उन्होंने बताया नहीं। ऐ इब्ने साद, ऐ साद के बेटे, जो तुझे इस वक्त इस दुनिया में कर्ज लग रहा है हमारी निगाह में वही नकद है, और जिसे तू नकद समझ रहा है ये इस दुनिया में रह जाने वाला कर्ज है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मैं करीब हूं। तो करीब जो है उससे करीब होने का मतलब यह है कि आप खुदा से करीब हो जाएं। अब आपको कुछ फलसफा समझ में आएगा सलावात का। जब कहा ना दुआ करो तो पहले भी सलावात बाद में भी सलावात, क्यों कहा, आगे पीछे उनका तज़करा करो जो खुदा की बारगाह में नजदीक हैं। अल्लाह जो कुर्ब इलाही की मंजिल पे। हर अमल आप इसीलिए करते हैं, कोई अमल दिखाइए मुझे जिसमें नियत में ये ना हो कुर्बतन। हर अमल किस लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल होगा, अमीरुल मोमिनीन ने एक फॉर्मूला दिया था, बड़ा अजीब फॉर्मूला है, कहा दोस्त का दोस्त हमेशा दोस्त होता है, दोस्त का दोस्त हमेशा दोस्त, और दोस्त का दुश्मन हमेशा दुश्मन। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है। तवज्जो फरमा रहे हैं जरा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है, दोस्त का दोस्त हमेशा दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन। अल्लाह तेरे दोस्त कौन है? अल्लाह तेरे औलिया कौन है? कहा वही जिन पे मैंने दुरूदो सलाम भेजना वाजिब किया है, वही जिनके लिए सुबह शाम दुरूदो सलाम का सिलसिला है, ये अल्लाह के दोस्त हैं। अगर ये खुदा से नजदीक हैं तो फार्मूला अब यूं बैठेगा, जो करीब वाले से करीब है वो भी करीब है, जो दूर वाले से दूर है वो भी करीब है। लिहाजा क्या करना है? उनको ढूंढना है जो खुदा से करीब हैं। नमाजें अपनी जगह पर, रोजे अपनी जगह पर, इबादतें अपनी जगह पर, ये सब कुर्बतों लिल्लाह कुर्ब इलाही की मंजिल फराहम करेंगी, लेकिन अगर मवद्दत और मोहब्बत अहले बैत नहीं है कोई फायदा नहीं। जबान हुस्न हकीकत का एतराफ नहीं, जबान हुस्न हकीकत का एतराफ नहीं, हुजूर दीदे दिल का गुबार साफ नहीं, बदन पे जामा एहराम दिल में बोगज़े अली, तेरे नसीब का चक्कर है ये तराफ नहीं। ये अहले बैत का कुर्ब है जो खुदा का कुर्ब अता करता है। अब मैं जुमला कहूं एक, आप फौरन पहुंच जाएंगे, कोई कहीं का भी है, कहीं का भी है, एक रात के किसी एक पहर में उसने कहा मुझे हुसैनी होना है, वो जो जहन्नुम की घाटियों में पड़ा था, सिर्फ हुसैन के कुर्ब ने उसे उस फौज से निकाला जो लानतुल्लाह थी और अलैहिस्सलाम की सफ में ला खड़ा किया। ऐसा ही है ना, ये किसका कुर्ब था? ये हुसैन का कुर्ब था जिसने हुर को कुर्ब इलाही अता किया। आप अस्हाबे इमाम हुसैन की जियारत में क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका या अंसार अल्लाह है। भाई उन्होंने तो हुसैन की मदद की थी, अंसार अल्लाह कैसे हो गए? ये तो हुसैन के मददगार थे, ये अल्लाह के मददगार कैसे हो गए? क्या यही तो बताना है, यही तो बताना है। हुसैन की जिसने मदद की उसने खुदा की मदद की, हुसैन से जिसने मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की, हुसैन से जिसने गुम रखा वो खुदा का दुश्मन है, हुसैन के जो नजदीक हुआ वो खुदा से नजदीक है, हुसैन से जो दूर रहा खुदा से दूर है। जो है ना हजरात की सामा खराशी का बायस तो इंशाल्लाह नहीं बन रहा। तो आप हमें ये पता चल गया बारगाह खुदा में मांगना है, दुआ करनी है, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम तो खुदा के शायान शान अल्फाज भी चुन के इस्तेमाल करना नहीं जानते, हमें नहीं पता। भाई आप देखिए आमतौर पे क्या होता है, आप किसी, ये मैं बिला तशबीह अर्ज कर रहा हूँ, आप वजीर आजम के पास चले जाएं, आप सदर के पास चले जाएं, तो अगर आपको उनको कुछ लिख के देना हो, हमें याद है बचपन में जब हम फोर्थ फिफ्थ क्लास में थे तो पूरा एक हिसाब किताब रटाया जाता था हमें एप्लीकेशन दरख्वास्त लिखने का, उसमें ऊपर अलकाब नीचे अलकाब और बड़े मुअद्दबाना अंदाज में एक यौम की छुट्टी मांगने का हमें सलीका सिखाया जाता था। भाई जैसे लिख दें एक छुट्टी चाहिए खत्म, कन्हई तुम्हारे मदरसे तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो एक मकाम पे हैं, उनसे मुखातब होने का पहले तर्ज तकल्लुम सीखो। तर्ज तकल्लुम सीखोगे उसके बाद दरख्वास्त लिखो, चाहे रटा हुआ क्यों ना हो, मुझे नहीं पता आप पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, चाहे रटा हुआ हो लेकिन तुम्हें पता हो हिफ्ज मरातिब क्या है, किस तरह से मांगना है, कैसे दरखास्त करनी है। तुम्हारा दर्जा मार्फत इतना नहीं है कि तुम परवरदिगार के शायाने शान अल्फाज इस्तेमाल करो, छोड़ो तुम उससे मांगने का ढंग भी नहीं रखते। आओ हम तुम्हें सिखाते हैं उसकी बारगाह से कैसे मांगना। मैं कहता हूँ सैयद सज्जाद, ये आपका हम पे करम है कि आपने सहीफे सज्जादिया देकर हमें खुदा से मांगने का ढंग सिखाया है, वरना हमारे पास तो मांगने का ढंग नहीं था। हम क्या जाने खुदा क्या है, रसूल ने कह के ये मामला ही तमाम कर दिया कि ऐ अली खुदा को कोई नहीं पहचाना सिवाय मेरे और तेरे, और मुझे भी कोई नहीं पहचाना सिवाय अल्लाह के और तेरे, और तुझे भी कोई नहीं पहचाना सिवाय अल्लाह के और मेरे। तो जब मामला ये है तो मुखातब करने के लिए अल्फाज का चुनाव सामने वाले की मकाम व मंजिलत को देखते हुए होता है। मुझे तो खुदा की मार्फत ही नहीं है, मैं कैसे अल्फाज का चुनाव करूं, मैं कहां से लाऊं अल्फाज उसकी बारगाह में इस्तेमाल करने के लिए, कहां से अल्फाज लाऊं। कहा तुम्हारे पास नहीं, हम देते हैं। कहा अगर गैर मासूमों तक बैठे रहोगे तो बस 99 नाम पता चलेंगे, अगर मासूम तक पहुंचोगे तो जोशन कबीर की सूरत में हजार अस्मा तालीम हो जाएंगे। हम सिखाएंगे तुम्हें मांगने का ढंग। और वाह बयान सैयद सज्जाद, हमारी लाखों जाने कुर्बान। सैयद सज्जाद ने दुआ मांगने का ढंग सिखाया है, किस तरह मेरे मौला ने दुआ मांगने का ढंग सिखाया है कि रे आओ तुम्हें बताते हैं दुआ कैसे करनी है। चांद निकले ये दुआ मांगो, रमजान जाने लगे ये दुआ मांगो, ईदैन आए ये दुआ मांगो, नमाज शब के लिए उठो ये दुआ मांगो, गुनाह सरजद हो जाए तौबा करना चाहो ये दुआ मांगो, अच्छे अखलाक चाहते हो ये दुआ मांगो। और आप ये मत समझिए कि सैयद सज्जाद ने फकत ये दुआएं दी हैं, इजाजत है 2 मिनट में ये बात कर लूं। सैयद सज्जाद ने ये फकत दुआएं इसलिए नहीं दी, आप आए पढ़ें और आगे चलते जाएं। ये जुमला मुझे बहुत लबों पर रखा है, मैं बहुत छुपा कर कह रहा हूं क्योंकि मुझे हालात और मकाम की जहाँ बैठे हुए हैं उसकी नज़ाकतों का इल्म है। हम कितना जा जा के लड़ते हैं दुनिया से कि हमारे आइम्मा हक पे हैं, और हैं, कोई शक नहीं है, ऐसे ही है ना, कोई शक तो नहीं है। हम कितना लड़ते हैं हमारे आइम्मा हक पे हैं, रसूल के बाद हक उनका था, हमारे आइम्मा के सामने जो भी आए वो किसी काबिल नहीं है, ऐसे ही है। कितनी दलील देते हैं, क्या क्या करते हैं। आज आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, ये दुनिया के किसी भी कोने में ले जाएं एप्लीकेबल भी है और इसका जवाब भी नहीं है। छोटी सी बात बता रहा हूं, जहां कोई आपके मुकाबिल आकर ये कहे कि आप अहले बैत के मुकाबिल किसी को क्यों मानने को तसव्वुर करने को तैयार नहीं है, तो उनसे कहें भाई एक मिनट रुकिएगा, नहजुल बलागा उठाएं, सहीफा सज्जादिया उठाएं, चंद दुआएं उठा के उनके सामने रखें कि भाई जिनको मैं मानता हूं उनका कलाम ये है, इस जैसा तुम जिसका ला के दिखा दो मैं मानने को तैयार हूं। इस जैसा ला के दिखा दो, आप यकीन करें एक दुआ नहीं ला सकते, एक दुआ नहीं ला सकते कि जिसको अहले बैत की दुआ के सामने लाके रखा जाए। इतनी छोटी छोटी दुआओं में इतना इतना मतलब के उलामा जिल्दे लिख दे। अली घर से सफर पे निकल रहे हैं। अब आप सफर पे जाते हैं, वो कुरान की जो मशहूर मारूफ आयते हैं उसको दुआ के तौर पे आप पढ़ते हैं। अली ने इससे आगे भी एक दुआ तालीम किया, मैं अरबी भारत नहीं पढ़ता, तर्जमा करूं वक्त बहुत हो गया। अजीब चोल है वल्लाही, क्या मतालिब की रवानी है और क्या उसके अंदर गम्माजी के लिए गवास चाहिए। का ए अल्लाह, इस सफर में तू मेरा हम सफर है, और फकत ये नहीं कि तू मेरा हम सफर है, सफर में तू हम सफर भी है और घर वालों के पास भी मैं तुझे ही छोड़े जा रहा हूं। हम सफर भी तू मेरा है और पीछे घर वालों के पास भी मैं तुझे छोड़े जा रहा हूं। और ऐ खुदा, ये बात सिर्फ तेरी ही जात में जमा हो सकती है, वरना तरीका तो ये है, जिसे साथ ले जाए उसे छोड़ा नहीं जाता, जिसे छोड़ दे वो साथ नहीं जाता। किस मर्तबे पे आकर आइम्मा हमें तालीम दे रहे तौहीद की, सहीफा सज्जादिया पूरी तालीम है तौहीद की, जाके उठाइए पढ़िए। सहीफा सज्जाद फकत दुआ नहीं दे रहे आपको, दुआ के अंदर क्या मतालिब दे रहे हैं आप। एक मकाम पे आके सहीफा सज्जाद कह रहे हैं, या गनी अल अगनिया अना अफकरुल फुकरा। अच्छा, ए गनियों के गनी, मैं फकीरों का फकीर हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं क्या? अब कोई कहे नहीं, हमारे आइम्मा तो फकीर कैसे होता, अमीर बिल्कुल अमीर है, कोई शक ही नहीं है, जिनका पहला ही अमीरुल मोमिनीन हो। लेकिन फर्क है, जिस तरह हर दरबार के दरबारी बुरे नहीं होते, अगर दरबार किसी ऐरे गैरे नथु खैरे का हो तो दरबारी भी ऐसे हैं, लेकिन अगर दरबार सुलेमान नबी का हो तो दरबारियों के लिए ये मकाम इज्जत शरफ है। वैसे ही ये भी देखना है कि अगर गरीब है तो किसका गरीब है, फकीर है तो किसका फकीर है। अहले बैत पूरी दुनिया के अमीर है, बारगाह खुदा में फकीर है। पूरी दुनिया में इनसे बढ़ के अमीर कोई नहीं, और बारगाह खुदा में ये क्या कहते हैं, हमसे बढ़ के कोई फकीर नहीं। क्यों? आप जर्फ देखे ना, आखिरी बात कह रहा हूं, जर्फ अगर एक गिलास लें तो गिलास में उतना ही पानी आएगा जितना गिलास का जर्फ है, जग में भी उतना ही आएगा जितना जग का जर्फ है, टैंकी में उतना आएगा जितना टैंकी का जर्फ है। मालूम है, जिसका जर्फ ज्यादा होगा वो तलब भी तो ज्यादा करेगा। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे, गिलास बस वहीं तक तलब करेगा। अगर आप जग से डाल रहे हैं गिलास में पानी तो जहां तक भर गया भर गया, उसके बाद तलब नहीं करेगा। मालूम है, जर्फ जहां ज्यादा होगा वहां तलब भी ज्यादा होगी। जितना आता जाएगा जर्फ बड़ा होगा तो और मांगता चला जाएगा, कम जर्फ होगा तो जितना मिला है उसी पे इत्तेफाक करके बैठ जाएगा। चूंकि अहले बैत का जर्फ इस आलम इम्कान में सबसे बढ़कर हो, लिहाजा जब बारगाह खुदा में पहुंचते हैं तो कहते हैं, ए खुदा चूंकि जर्फ ज्यादा है इसलिए हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तुझसे मांगने वाले हैं। हमारा जर्फ ज्यादा है और पूरी दुनिया को फिर इसी दर से बट रहा है, इस दर से बट रहा है। सैयद सज्जाद आपको बता रहे हैं दुआ कैसे करनी है। आज एक पैगाम दे रहा हूं बुजुर्गान तो यकीनन जानते हैं, जवानों के लिए, घरों में यकीनन सहीफा सज्जादिया होगी। आज सैयद सज्जाद की शहादत का दिन, अपने आप से एक अहद कर लें, अगर हर रोज नहीं तो महीने में कम से कम एक दफा एक दुआ तो पढ़ूं अपने मौला की, और आप यकीन कीजिए इसका असर आपको महसूस होगा। जब आप अपने इमाम की जबान से निकले हुए जुमलों के साथ बारगाह खुदा में पहुंचेंगे, इन जुमले आपको पर बेलाही अता करेंगे। बस मैंने यहाँ अपनी गुफ्तगु को रोक दिया। आज आप सारे यहाँ बैठे हैं सैयद सज्जाद को रोने के लिए। वो सैयद सज्जाद जो खुद अपने बाबा को 35 साल रोता रहा, पूरा साल आप इमाम हुसैन को रोते हैं और इमाम हुसैन का पुरसा सैयद सज्जाद को देते हैं। आज मैं आप सब की तरफ से बारगाह इमाम हुसैन में अर्ज करता हूँ, आका आज आपके बेटे का पुरसा आपको देते हैं। खुदा की कसम ये सैयद सज्जाद ही थे जो ये मंजिले गुजार गए। असबरुस साबिरीन सैयद सज्जाद। मुझसे क्या किसी ने के आज फकत सैयद सज्जाद के मसाइब पढ़िए, तो मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा वाकई करबला में जब हुसैन शहीद हुए, शहादत के बाद से लेकर मदीने पहुंचने तक जो कुछ हुआ वो सब सैयद सज्जाद के मसाइब है, वो सब सैयद सज्जाद के मसाइब है। मैं आज चाहता हूं कि खुल के मसाइब पढ़ूं, एक दिन आता है ऐसे इमाम का। खुदा जितने यहाँ बीमार बैठे हैं, जिनके मरीज बीमार हैं, पूरी दुनिया में जो मोमिनीन बीमार, परवरदिगार सबको शिफा इनायत करे इस इमाम के सदके। जरा दो लम्हे के लिए तसव्वुर करें, खुदा ना खास्ता किसी के वालिद का अगर इंतकाल हो जाए और वो आ न सके बाप की मैयत पे, अमरीका में हो, कनाडा में कहीं बैठा हो, हालात नासाजगार हो, आ न सके, जरा उसके दिल से पूछिए उस पर क्या गुजरती है। अब जरा सैयद सज्जाद के बारे में सोचें, जवान बेटा कहीं दूर नहीं है, सामने खड़ा है, लाशा रख पड़ा हुआ है खाक पर बेहोश कफन, लेकिन बिना दफनाए सैयद सज्जाद दादा के लाशे को अलीदा करके पूछे जा रहे हैं। बड़े दुख थे सैयद सज्जाद के, मैं कहां अर्ज करूं आपके सामने, कैसे बयान कर सकता हूं, चंद दुख सुन लीजिए सैयद सज्जाद के। एक दुख क्या है सैयद सज्जाद को, ये आपको जब पता चलेगा जब सैयद सज्जाद अपने बाबा की कब्र पे आए 13 मुहर्रम, एजाज़े इमामत से तशरीफ लाए, सब शहादा को दफनाया, जब इमाम हुसैन की मैयत को दफनाने की कोशिश की, ये जुमला अगर मैंने पढ़ा ना होता मैं नकल नहीं करता, लवाइजुल अहज़ान में ये जुमला मौजूद है। कहते हैं सैयद सज्जाद ने चाहा अपने बाबा का लाशा उठाए, लाशा तो नहीं उठा, टुकड़े उठने लगे, तो बनी असद वालों से कहा कोई चटाई ला दो, चटाई पे लाशा रखा और कब्र में उतार दिया। और आप सैयद सज्जाद ने कब्र बनाई, आप भी जब दफनाते हैं क्या करते हैं, कतबा लिखते हैं ना, आप सैयद सज्जाद के पास कहां मौका कतबा लिखने का, काफी देर तक बैठे रोते रहे, जब कब्र को अपने अश्कों से गीला कर चुके तो अपनी अंगुष्ठ मुबारक से एक इबारत लिखी कब्र पे। इस इबारत को सुन लीजिए आपको पता चलेगा सैयद सज्जाद को क्या दुख है। लिखा हाज़ल कब्रुल हुसैन अल्लज़ी क़त्लूहु अत्शानन ग़रीबा, ये उस हुसैन की कब्र है जिसे आलमे ग़ुरबत में प्यासा ज़बह किया गया। बड़ा दुख है सैयद सज्जाद को कि मेरे बाबा को प्यासा कत्ल कर दिया। आपको पता ये पानी जो होता है, आपके सामने की बात है, ये बड़ी हकीर चीज है, अगर गली में गुजरते हुए किसी को रात के वक्त दिन के वक्त प्यास लग जाए ना, वो दरवाजा खटखटाते हुए जरा शर्म महसूस नहीं करेगा, वो आपका दरवाजा बजाएगा, कहेगा प्यास लगी हो पानी दो, और आगे से कोई ऐसा नहीं होगा जो कहेगा चाय में पानी नहीं देता। हुसैन ने पानी तलब किया तब भी जवाब यह मिला, हमारे जानवर ये भी उधर रहेंगे तुम्हें नहीं मिलेगा। अजरों को मालूम हुआ। और दूसरा गम क्या है सैयद सज्जाद का, एक शख्स आया, कहने लगा आका कितना रोएंगे, बहुत क्रिया कर लिया, कितना रोएंगे। कहा तुमने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, काका गलती हो गई तो माफ कर दे। कहा याकूब का एक यूसुफ उनकी आंखों से उछल हुआ था, जानते थे वो जिंदा है, लेकिन फिर भी रोते रोते आंखें सफेद हो गई। अरे मेरे तो सामने मेरे 18 यूसुफ जिना कर दिया, मेरे सामने मेरे 18 यूसुफ जिना कर दिए। काका शहीद हो जाना तो आप लोगों का आपकी मीरास है, ये तो आपकी आदत है। कहा हाँ बिल्कुल आदत है, लेकिन जरा मिनहाल ये तो बताओ, ये माओ बहनों का दरबारों में और बाजारों में बगैर मखना चादर जाना, ये कब से हमारी मीरास हो गई? अजरकुम अल्लाह, ये कब से हमारी मीरास हो गई? आका आका ज्यादा गिरिया ना करें, ज्यादा ना रोएं। ये रिवायत के जुमले हैं। 35 साल करबला के बाद जिंदा रहे, जब भी सामने पानी आता है मेरा मौला देखता क्रिया शुरू करता, हाँ जो वही पानी है जो मेरे बाबा को नहीं मिला। जब खाना आता, हाँ ये वही गजा है जो मेरे बाबा को नहीं मिली। रोते रहे सही सर। एक जुमला और सुन लीजिए, आपकी जहमत तमाम करूं। एक और गम है सही सज्जाद का, ये भी रिवायत के जुमले, मैं अपनी तरफ से कोई खतीबाना सुखन को सलाना जुमला नहीं बोल रहा। कहते हैं वाकए करबला के बाद जब सरे हुसैन की दरबार इब्ने ज़ियाद और दरबार यजीद में सैयद सज्जाद ने बेअदबी होती देखी, उसके बाद सारी जिंदगी सैयद सज्जाद ने किसी जानवर की गर्दन का गोश्त नहीं खाया। सारी जिंदगी किसी जानवर की गर्दन का गोश्त नहीं खाया। आपने सुन लिया, ये बात गुजर गई, मुझसे पूछे तो सही, ऐसा क्या देख लिया सैयद सज्जाद ने? ताश्त में सरे हुसैन रखा है, वो लईन अपनी शरीर खाता है, कभी इमाम के दंदान को मारता है, कभी हुसैन की आंखों को मारता है, और कहता हुसैन